नमस्कार दोस्तों, मोबाइल से आपका दोस्त योगेश। हमारा आज का विषय है पक्ष विपक्ष में घटती गरीबी और सरकारी डाटा की सच्चाई। पिछले 10 सालों में गेहूं की एमएसपी में महज 800 रुपये की वृद्धि हुई है, वही धान में 823 रुपये की वृद्धि हुई है। सरकार की तरफ से 23 फसलों को एमएसपी में शामिल किया गया है, जबकि इसका बहुत बड़ा हिस्सा और धान गेहूं के ही हिस्से में जाता है। यह हाल तब है जब महज कुछ प्रतिशत किसानों को ही इन फसलों की एमएसपी मिल पाती है। एक और आंकड़ा है कि वास्तविक स्थिति को बेहतर ढंग से बयां करें तो 2013-14 में एक परिवार की मासिक आय 6,426 रुपये थी, वही वर्ष 2018-19 में यह बढ़कर 10,218 रुपये रही है। इसके बाद सरकार ने आंकड़े जारी करने बंद कर दिए। इसके पीछे कुछ वजह नहीं है, पर वास्तविक स्थिति बिना आंकड़ों के कैसे देखते हैं? आज हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए जनक्रांति समिति के संयोजक श्रीचंद जी चौरिया सर जुड़े हुए। सर, मोबाइल पर स्वागत सर आपका।
मोबाइल वाणी पर अपनी बात रखने के लिए मुझे आपने आमंत्रित किया, इसलिए मोबाइल वाणी परिवार को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
जी सर,
आज का जो आपका प्रश्न है, आपने कहा कि घटती गरीबी और छिपता सरकारी डाटा।
जी
घटती गरीबी तो जो है, आज की जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें जो हम, जहां तक किसानों की बात है, जो किसानों के मुद्दे के ऊपर बोल रहे थे, एमएसपी के ऊपर बोल रहे थे, अन्य फसल भी जो एमएसपी पे जो तय की गई है, तो सरकार अपने जो आंकड़े हैं, आंकड़े सरकार क्यों छिपाती है, ये बात थोड़ा सा चिंतनीय विषय है। कि सरकार ने कहा कि हम एमएसपी तय करेंगे, एमएसपी के ऊपर किसानों की फसलों को, चुनाव के समय भी वादे ये लोग करते हैं कि हम लोग एमएसपी पर ही फसल की खरीदी करेंगे। लेकिन अभी मैं पिछले चुनाव की आपको याद दिलाता हूं कि पिछले चुनाव में, अभी आपको ज्यादा ये बात ना करते हुए मैं गेहूं की बात करूंगा कि गेहूं के ऊपर इन्होंने क्या कहा था कि हम 2700 रुपए इसकी एमएसपी तय करेंगे और इसके ऊपर किसानों की खरीदी की जाएगी। अभी आप देखिए, अभी पंजीयन हो रहा है, अभी पंजीयन हो रहा है किसानों की फसल का, उसमें अभी क्या रेट कर रहे हैं, 2100-2200 रुपए से इन्होंने ऊपर में 2200 से 2300 किया है, इसके
जी
ऊपर ये लोग जाने को तैयार नहीं है। तो इनका मतलब है कि ये कुल मिला के अपना डाटा को तो छिपाने का काम करते हैं। तो सरकार का काम है कि जो गरीबी है, तो गरीबी में हमें सबसे पहले जो लागत बढ़ रही है, लागत बढ़ना और इनकम घटना, ये सबसे बड़ा कारण है कि हर क्षेत्र में लागत का बढ़ना और इनकम का घटना। इनकम पूरी तरीके से जो घट रही है और लागत बढ़ रही है, और सरकार आंकड़े को छिपा रही है। सरकार नहीं चाहती कि ये वास्तविक आंकड़े, वास्तविक गरीबी के आंकड़े जनता के सामने आए। अगर जनता के सामने वास्तविक आंकड़े आएंगे तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को या सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए सरकारें 2018 के बाद में सरकारें आंकड़े छिपा रही हैं, आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर रही हैं। सरकार कहती है कि हम लोगों ने गरीबों के ऊपर बहुत बड़ा काम किया है, हम लोग गरीबों के सवाल के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक परिस्थिति, जमीनी हकीकत अगर आप जानना चाहेंगे तो सरकार की जो योजना है, मैं मानता हूं कि बहुत सारी योजना सरकार की जो है वो गरीबों के हित में है, गरीब किसानों के हित में है, लेकिन बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिसके कारण किसानों का, गरीबों का नुकसान भी हो रहा है। तो ये जो परिस्थिति बनी हुई है, इसके ऊपर सरकार को सुधार करना चाहिए और पारदर्शिता रखना चाहिए। एकदम पारदर्शिता अगर सरकार रखेगी और पारदर्शिता रखते हुए अगर इसका आकलन करेगी, वास्तविक जमीनी हकीकत का अगर आकलन करेगी, वास्तविक गरीबों का आकलन करेगी, वास्तविक किसानों की परेशानी का आकलन अगर करेगी, तो मैं मानता हूं कि निश्चित तौर पर सरकार आंकड़े प्रस्तुत करने में पूरी तरीके से सक्षम रहेगी। और सरकार ने अगर सही आंकड़े दिया और सही जमीनी हकीकत के ऊपर अगर सरकार काम करेगी, तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के गरीबों को इसका लाभ मिलेगा और सरकार बहुत आसानी से आंकड़े भी प्रस्तुत कर पाएगी। सरकार तो आंकड़े जब प्रस्तुत करेगी, जब सरकार को ये लगे कि हमारे द्वारा किए गए कार्य से हिंदुस्तान की जनता काफी लाभान्वित हुई है, या हिंदुस्तान की जनता को महसूस होने लगा है कि सरकारी आंकड़े और वास्तविक जो कार्य किया जा रहा है उसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, अंतर नहीं है। जिस दिन सरकार को ये समझ में आ जाए कि इसमें अंतर नहीं है, हम जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं और जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं वो जमीनी हकीकत में भी तब्दील हुआ है, उस दिन सरकार आंकड़ा प्रस्तुत करना पुनः चालू कर सकती है। तो इस
जी
तरीके से आज किसान और गरीब, मैं मानता हूं कि कृषि योजनाओं से तो लाभ लाभान्वित हो रहे हैं किसान और गरीब, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर आज भी सरकार के वास्तविक आंकड़े। अभी एक बात और हम कहना चाहेंगे कि आप अभी देखिए, सरकार ने हर सीमा को पार किया है, हर परिस्थिति पे हर मुद्दे के ऊपर सरकार ने काम किया है, लेकिन भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार एक इतना बड़ा मुद्दा है कि इसके ऊपर आज भी न पिछली सरकार न वर्तमान सरकार ने कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया है। मैं आपको बहुत बड़ा उदाहरण नहीं देना चाहता, एक ही उदाहरण देना चाहता हूँ, नल जल योजना। अभी नल जल योजना के बारे में मैं आपको बताया कि नल जल योजना एक अकेला ऐसा आंकड़ा है, अभी 68 करोड़ रुपए यहाँ पर अकेले छिंदवाड़ा की बात करें हम तो 68 करोड़ रुपए इस पे विड्रॉ हुआ है, निकला है पैसा, ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन ये गरीब के तक इस मामले की जानकारी नहीं दी गई। और आज भी देख रहे हैं 68 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी छिंदवाड़ा के 2000 गांव, 2200 गांव में से 1500 गांव के स्कूल ऐसे हैं जहां पर आज भी स्वच्छ नल की व्यवस्था नहीं की गई है। कहीं नल लगे हैं तो कहीं टपरे लगा दिए हैं, कहीं वायरिंग नहीं हुई है, कहीं पानी नहीं है। 1500 से ऊपर ऐसे स्कूल हैं जहां पर आज भी नल जल की सुविधा नहीं की गई है, और सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि हम लोगों ने नल जल पर 68 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। तो मेरा कहना है कि सरकार जब तक इसको जमीनी हकीकत को नहीं समझेगी और भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाकर जनहितैषी योजनाओं को जनता तक भेजने में सफल नहीं होगी, तब तक मैं समझता हूँ कि ये तो सब आंकड़े कागजों पर चलेंगे और जमीनी हकीकत कुछ अलग होगी और कागजी आंकड़े जो है वो कुछ अलग होंगे।
जी सर, सर 180 देशों की लिस्ट में भारत 85 से 93 स्थान पर गया है सर, करप्शन के मामले में 2023 की रिपोर्ट में। सर इस पर क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, वो तो ठीक है, उसपे गया है, लेकिन इसमें वास्तविक जो दोषी है या वास्तविक जो रिकॉर्ड जो बता रहे हैं कि आज भी इन्होंने जो, भाई ये तो ऑल इंडिया का नहीं, तो ये तो हिंदुस्तान के लेवल पे वो हुआ है सर्वे, भाई दुनिया का जो सर्वे है उसके अंदर इनकी इनका जो स्थान बना है वो स्थान बना है, उसमें कहीं ना कहीं ये बात सही है कि जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये संभाला है तब से देश में अर्थव्यवस्था के ऊपर और भ्रष्टाचार के ऊपर कुछ अंकुश लगा है, इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा, सच्चाई है, लेकिन वास्तविक स्थिति जो है वो कागजी जो आंकड़े हैं उससे कोसों दूर है, जमीनी हकीकत जो है वो उससे कोसों दूर है। अब उनका सर्वे करने का क्या तरीका है, कैसे उन्होंने सर्वे किया है, वो तो सर्वे एजेंसी जो तय होती है वो सर्वे एजेंसी डिसाइड कर पाती है कि कौन सा देश किस नंबर पे है और कौन सा सेक्टर में किसको क्या लाभ मिला है, उनका अपना एक मापदंड होता है, हर एजेंसी अपने मापदंड के अनुसार अपनी नजर के अनुसार पे ये सब सर्वे करती है, कराती है, सरकारें कराती हैं। लेकिन वास्तविकता अगर हम जमीनी स्तर पर देखे जाएं तो उसमें मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, अगर जमीनी हकीकत और उन आंकड़े को अगर हम मिलाएं तो आज भी हिंदुस्तान के जो आंकड़े आए हैं उसमें मुझे बहुत डाउट हो रहा है कि जमीनी हकीकत और आंकड़े में बहुत ज्यादा डिफरेंस है।
जी सर, सर क्या देखते हैं कि 23 फसलों पर जो MSP दी जाती है वो कुछ ही किसानों को मिलती है, तो क्या हर किसान को MSP मिले हर फसलों पर जो 23 प्रकार की फसलें नियुक्त की गई है, तो ऐसी कोई व्यवस्था है सरकार द्वारा की जानी चाहिए ताकि हर किसानों को लाभ मिले?
देखिए, अभी आपको बताएं कि सरकार तो 23 फसलों पे भी MSP तय करने की बात चल रही है कि मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज, अभी वन उपज के ऊपर देखिए आप, वन उपज के ऊपर भी सरकार ने 22 वन उपज की जो प्रजातियां हैं उनके ऊपर भी MSP तय करके रखी है, लेकिन उसपे भी करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, उसपे भी समितियों के माध्यम से करोड़ों रुपए अरबों रुपए हिंदुस्तान का खर्च हुआ है, लेकिन कोई भी प्रदेश में कोई भी आंकड़े ये नहीं कह सकते कि हमने जो तय किया है उस रेट के ऊपर हमने गरीबों से, आम उपभोक्ता से उस MSP के भाव से हमने वन उपज खरीदी हो या किसानों की फसल खरीदी हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो सिर्फ तय होता है, ये सिर्फ कागजी आंकड़े हैं, लेकिन वास्तविक अभी देखो आप, हर्रा बेड़ा महुआ गुठली जितना भी, हम तो जंगल से जुड़े लोग हैं, अभी देखिए अभी का आप किसी भी, इनकी करोड़ों रुपए की दुकानें बनी हुई है सरकार की, सरकार का उसमें सारी व्यवस्थाएं है, सरकार का पूरा पैसा लगा हुआ है, लेकिन किसी भी दुकान के ऊपर बताइए आज ट्राइबल आदिवासी एरिया है, कहीं भी कोई भी इनकी फॉरेस्ट की जो दुकान बनी जिसपे MSP तय हुआ है, महुआ गुठली औला जो बहरा जो खरीदी करना है, कोई केंद्र पे नहीं खरीद रहे हैं, और सरकार की आंख बंद है, सरकार को समझ नहीं आता कि हमने अगर कोई कानून बनाया है या कोई नियम बनाया है तो इसका जमीनी स्तर पर इसका फॉलो क्यों नहीं होता, इसकी मॉनिटरिंग कौन करती है, या जिले के कलेक्टर क्या करते हैं, या जिले अगर सरकार ने अगर कोई नियम बनाया है, सरकार ने अगर कोई कानून बनाया है तो उस कानून का परिपालन नहीं करने वाले दोषियों के ऊपर सरकार सख्ती से अपना कार्य नहीं कर पाती या सख्ती का उपयोग नहीं कर पाती। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये जो खामियां हैं ये हमारे लिए, हिंदुस्तान की जनता के लिए और आम उपभोक्ता के लिए, आम शोषित पीड़ित गरीबों के लिए एक चिंताजनक विषय बना हुआ है।
जी सर, सर देश का 65% जो देश है वो युवा है सर,
जी
और देश के युवाओं में जो कृषि के प्रति जो अपना लगाव देखते हैं वो कम होते जा रहा है, क्या कारण देखते हैं और इसको सुधारने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए?
आप बताइए, ये बहुत अच्छा आपका जो सवाल है कि आज युवाओं के भरोसे में ही आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि युवा हैं तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, युवा ही शक्ति है, युवा, और वास्तव में अगर युवा तय करेगा तो ही आगे की लाइन तय होगी। लेकिन युवाओं के बारे में अब हमें किसी की बात नहीं, लेकिन एक बहुत एक स्पष्ट नजारा सामने आ रहा है कि सरकार ने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अब आंकड़े निकाल के देख लीजिए, आज 9 साल हो गए सरकार के, 9 साल में आप 2-2 करोड़ के हिसाब से अगर लगाएं तो कहाँ रोजगार मिला है। हम बहुत दूर ना जाएं तो हम एक जिले का अगर आकलन अगर देख लें कि भाई हमारे 2200 गांव हैं, 2200 गांव में अगर हम एक किसी एक गांव के रहने वाले हैं, हम अपने गांव का आकलन कर लें कि हमारे गांव में कितने युवाओं को रोजगार मिला है, तो सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बना पाई, ऐसा कुछ सेक्टर तैयार नहीं कर पाया जिससे युवाओं को रोजगार मिले। जब रोजगार नहीं मिला तो किसानों, सरकार, युवाओं ने सोचा कि हम लोग किसानी के ऊपर फोकस करें, लेकिन किसानी के ऊपर जो वो खानदानी परंपरा से वो देखते आ रहे हैं कि मेरे पिताजी ने खेती की तो खेती में कितना नुकसान हुआ, मेरे पिताजी ने जब से मैं खेती में लगे रहे तो खेती से उन्होंने अपना सिर्फ पेट भर पाया है, अपने बच्चे और परिवार की वास्तविक शिक्षा और वास्तविक पालन पोषण नहीं कर पाया है, इसीलिए हमारे हिंदुस्तान के युवाओं का जो ध्यान है वो खेती से भटका हुआ है। कोई भी चाहता है कि उसको कोई नौकरी मिल जाए, छोटी नौकरी मिल जाए, बड़ी मिल जाए, प्राइवेट नौकरी मिल जाए, मैं कर लूंगा लेकिन मैं खेती नहीं करूंगा, क्योंकि उसको वही पुरानी झलक नजर आती है कि मेरी खानदान से मैं देखते आया हूं, मैं सुनते आया हूं कि जिन्होंने भी खेती किया है वो नुकसान के सिवा उसको फायदा कहीं नहीं मिला है, इसलिए युवाओं का जो ध्यान है वो खेती से भटका हुआ है। जहां तक बात रही कि युवाओं को अब हम उसको कैसे प्रेरित करें, तो इसके लिए तो सरकार को ही अपनी कोई सशक्त योजना बनाना चाहिए जिससे किसानी फायदे में जाए और युवाओं का रुझान खेती के ऊपर बढ़े, इसमें तो सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ेगा।
जी सर, सर क्या वास्तविक आंकड़ों को नहीं प्रदर्शित करना और इससे जनता में क्या मैसेज जाएगा और जनता को क्या वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो पाएगा?
अब ये देखिए, अभी जनता तो ऐसा है कि हमारे हिंदुस्तान की जो जनता है उसमें 70% जो जनता है उसको सारे लोग समझ पा रहे हैं कि आज वास्तविक जानकारी से हमारे यहाँ की 70% जनता अनभिज्ञ है, उसको पता ही नहीं चल पाता। हम बता रहे हैं आपको कि क्या कानून बन गया है, अभी कितने हमारे यहाँ पर विभाग है, आप अपने एक सर्वे करवाइए कि मध्य प्रदेश में सरकार के द्वारा कितने विभाग काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि 80% लोगों को पता नहीं है, 80% लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि भी सरकार में कितने विभाग होते हैं और किस विभाग की क्या काम होते हैं, कौन सा विभाग क्या काम कर रहा है, किस विभाग में क्या योजनाएं चल रही हैं, किस विभाग का कौन मॉनिटरिंग कर रहा है। 70% लोगों को यही जानकारी नहीं है। जब लोगों को जानकारी ही नहीं होगी, जानकारी नहीं होने के कारण सारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इस पे सरकार को तो प्रचार प्रसार पे तो करते हैं खर्च, लेकिन वास्तविक प्रचार प्रसार कहाँ हो रहा है, कि जो योजना है उसका वास्तविक प्रचार प्रसार हो और वास्तविक लाभ जब तक लोगों को नहीं मिलेगा तब तक कोई समस्या का हल जमीनी स्तर पर मैं समझता हूं संभव नहीं है।
जी सर, तो ये थे हमारे साथ श्री संत चौरिया सर, जिन्होंने मोबाइल वाले पर घटती गरीबी और सरकारी डाटा की सच्चाई मोबाइल वाले के साथ साझा की। सर, मोबाइल वाले को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
शुक्रिया साहब, धन्यवाद।
जी, मोबाइल वाले का आपका दोस्त योगेश। धन्यवाद।